जहाँ मनुष्यत्व प्रकट हो गया, जहाँ सारे इहलोक परलोक के भोगों से विरक्ति हो गई, वहाँ तो षट संपत्ति आई। और षट संपत्ति आने के बाद मुमुक्षुता आई, और फिर उस मुमुक्षुता का वितरण करने के लिए हमने भवन बनाया। और उस मुमुक्षुता के भवन में अगर चलते हैं केसरा के द्वेष को लेकर, तो वो क्या चीज। स्वर्ग में दुख कैसा, वहां तो सुख ही सुख है, और स्वर्ग के आश्रम में भी अगर दुख हो तो क्या चीज। गीता में अगीता कैसी, तो भगवान का गीत ही जीवन में गाया जाना चाहिए। भगवान का स्वर ये गीता के अध्ययनकारी के जीवन का सुर होना चाहिए, तब वो गीता का ठीक अध्ययन करने वाला। चैतन्य महाप्रभु गए दक्षिण देश में घूमने, नित्यानंद महाराज साथ थे, तो देखा एक जगह एक ब्राह्मण देवता गीता का पाठ कर रहे और उनके आंखों से आंसू बह रहा, मत से बैठे स्तब्ध बिल्कुल, पर पाठ में अशुद्धि आ रही कहीं। नित्यानंद जी बड़े पंडित रहे, तो अशुद्ध पाठ उनको सहन नहीं हुई। विद्वान लोग जहाँ अशुद्धि देखते हैं वहाँ भगवान को भी भूल जाते हैं, बोले अशुद्ध बोलता है, ये व्याकरण दुष्ट है इसकी भाषा। तो भाषा देखते हैं, जीवन तो देखते नहीं। तो ऐसे नित्यानंद जी नहीं थे, वो तो महापुरुष थे, पर उनको भी भाषा जरा आखरी। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा, बोले महाराज ये अशुद्ध पाठ करता है। तो ये बोले करने दीजिए, आपका ख्याल ये बोले नहीं अशुद्ध करता है। तो बोले अच्छा जाकर समझा दीजिए। तो नित्यानंद जी महाराज ब्राह्मण के पास गए, दो एक बार चार बार पुकारा, ब्राह्मण तो बोलता नहीं, अपना पाठ किए जाता रो रहा है जोर से। ये बोले तब ब्राह्मण का होश हुआ, बोले महाराज तो भाई तुम पाठ अशुद्ध करते हो, बोले महाराज आता नहीं। पढ़ा लिखा हम नहीं, जैसा आता वैसा करता हूँ। तो बोले फिर रो क्यों रहे। वो महाप्रभु को एक चीज ही दिखलानी थी नित्यानंद जी को, नित्यानंद जी तो वास्तव में बड़े महात्मा थे। तो बोले महाराज रोना आता है। रोना क्यों आता है जबरदस्ती, बोले महाराज ये आप देखते हो ना, ये जो कुरुक्षेत्र सामने है और रथ पर ये अर्जुन उदास बैठा है और भगवान उपदेश कर रहे हैं, तो भगवान के उपदेशों में अमृत झर रहा है, तो अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे हैं और मेरे भी आंसू आ गए। तब तो चकित हो गए, आकर के बोले, बोले महाराज वो तो यू कहता है कि हम भगवान को देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मैदान। बोले महाराज दिखता होगा, दिखता होगा कौन बड़ी बात है। बोले नहीं नहीं, तो बोले आप एक काम करो, तर्क को छोड़ो और आप जाकर उस ब्राह्मण के पास उसका चरण छू लो एक बार भगवान के सामने विनम्र होकर। गए, सच्चे थे, कोई तर्कशील तो थे ही नहीं, जब जाके उनके चरणों के हाथ लगाया, लगाते कुरुक्षेत्र सामने हो गया इनके, इनको दिखने लगा। तो हाथ जोड़ लिए, ये गीता का असली पाठ। गीता पाठ करते समय भगवान जिक्र, हम तो भगवान पर भी तर्क करते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ यूँ बोले, यूँ बोलना चाहिए था, यूँ क्यों नहीं बोले, अरे हमारी हमारे हमसे शिक्षा लेके बोलने बैठे हैं वो, क्यों बोले और क्यों नहीं बोले, उनके उनके विचार तक बुद्धि तक हमारा पहुँचना दम्भ अभिमान भले ही हो, पर उनकी बात तो वही जानते हैं हम तो जानते हैं। तो साधक का ये कर्तव्य होता है कि वो राग द्वेष से परे रहकर अपने को दूसरे को बुरा न बताकर अपने को कमजोर मानते हुए, दूसरे को बुरा बताने का हमें क्या अधिकार है, न मालूम वो किस बुद्धि से किस विचार से किस परिस्थिति में क्या काम कर रहा है, किस परिस्थिति में हम होते तो न मालूम हम क्या करते। तो दूसरे को बुरा बताने का हमारा अधिकार नहीं, जो करते हैं ठीक करते होंगे अपनी बुद्धि से, पर हम कमजोर हैं, हमें अपनी कमजोरी के डर से अपने को बचाना है, तो अपने बचे रहना है, उनसे घृणा नहीं करना। भाई बहादुर लोग हैं, सब कुछ भी करें कर सकते हैं, पर हम तो कमजोर हैं, जल्दी बीमारी हमको लग जाती है, इसलिए हम बचे रहते हैं हमारी कमजोरी के कारण से, दुर्बलता के कारण से। हम अपना पथ्य लेते हैं, हम अपनी दवा लेते हैं, रोगनाश करना है। इसी प्रकार साधक अपने रोगनाश करने में रहे, अपने सुपथ्य से रहे, अपने मार्ग पर वो चलता रहे निरंतर, दूसरे की ओर देखना ताकना उसके लिए न आवश्यक है और न उचित है। ये जहाँ औचित्य मन में आता है परमत खंडन का, वहाँ पर अभिमान जागृत हो जाता है। अभिमान के जागने पर ही परमत खंडन का उत्साह होता है, अर्थात अपने मार्ग में रोड़ा अटकाने की वहाँ शुरुआत हम कर लेते हैं अपने आप। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुहार। दुस्संग में जाए नहीं, विवाद करे नहीं, लड़े झगड़े नहीं, किसी भी प्राणी पदार्थ वस्तु में मन को फंसावे नहीं, और अपने मार्ग पर सीधा साधा चला जाए, लोग मूर्ख कहे बड़ा अच्छा। ये महाराज संसार में सांसारिक दृष्टि में बुद्धिमान कहलाना, अग्रणी कहलाना, घर की मालिकी का प्राप्त होना, नेतृत्व मिलना, महंती मिलना, ये दुर्भाग्य के चिन्ह हैं। उपदेशक बनना ये भी ये दुर्भाग्य के चिन्ह हैं। उसकी उसकी उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है इन सब में पड़ने पर। डर होता, हम ये कहते कोई खंडन न कर दे। तुलसीदास महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जागे जोगी जंगम जति समाज ध्यान धरें, डरे उर भारी लोभ मोह कोह काम के, जागे राजा राज काज मंत्री समाज साज, सुन के समाचार बड़े बैरी बाम के, जागे बुध विद्या हित पंडित चिकित चित्त, जागे लोभी लालची धरणी धन धाम के, जागे भोगी भोग ही वियोगी रोगी रोग बस, सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। ये साधक का स्वरूप, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ हित चातक तुलसीदास। ये साधक का स्वरूप। तो अपने को साधना में जो बनाए रखना चाहता है वो अभिमान तो क्या करेगा, उसको तो अभी वस्तु प्राप्त करनी है ना। ये बड़ी सुंदर बात, प्राप्त होने पर अभिमान रहेगा नहीं। अगर ठीक वस्तु तत्व की प्राप्ति हो गई तो किसी भी बाहरी वस्तु का अभिमान उसमें रहेगा नहीं। आत्म प्राप्त भगवत प्राप्त पुरुष में लोकाभिमान को गुंजाइश नहीं, और जब तक साधक है तब तक वो अपूर्ण है ही, उसके पास अभिमान करने के लिए कोई वस्तु नहीं। अभिमान करने के वस्तु में तो अभिमान रहता नहीं, और अभिमान करने के वस्तु नहीं तो अभिमान किस चीज का। तो इसलिए न साधक को अभिमान करना और सिद्ध में तो अभिमान रहता नहीं। तो ऐसी अवस्था में अभिमान करने की आवश्यकता नहीं, बोलने चालने की आवश्यकता नहीं, चुपचाप अपने मार्ग का तय करना। कि महाराज पहले पहले होता है, फिर जब ये फंस जाता है ज़्यादा, तो आदमी फिर बाहर की वस्तुओं के प्राप्त करने में ललचा जाता है। मुझे कहनी नहीं चाहिए, पर अपने में आज वो बात है नहीं, गिर गया इसलिए कहने में आपत्ति नहीं। 1916 के बाद बांकुड़ा के 24 मील दूर एक गांव है शिमलापाल, वहाँ में नज़र बंद था। गवर्नमेंट ने मुझे पकड़ लिया था, वहाँ मैं नाम जप करता था। वो बात आज मेरे में नहीं है, वहाँ की बात थी वो मैं कहता हूँ, बड़ी अच्छी थी और साधक के लिए तो बड़ी अच्छी चीज़। मैं जो नियम से नाम जप करता वो तो करता, बाकी समय मैं ऐसा मेरा मन रहता कि नाम जप कभी बंद न हो। तो क्या क्या वृत्ति हो गई कि मैं चाहता कि मेरे पास कोई आवे नहीं, अगर आवेगा बातचीत शुरू कर देगा तो मेरे नाम में विघ्न हो जाएगा। मन तो भगवान में लगा नहीं था, जीव की चीज थी, और अरे कम से कम आएगा तो प्रणाम करके बैठाना तो पड़ेगा ना, इतनी देर ही जीभ दूसरे काम में लगेगी तो मैं चाहता कोई आवे नहीं। गवर्नमेंट की ममानियत थी, लोग आते भी डरते थे, आते भी नहीं थे, और यदि कोई आ जाता तो मैं उस समय मेरा मन ये करता कि जल्दी से उठ जाए तो अच्छा, और यदि वो बैठता तो ये मन करता कि भाई ये अपनी बात कह दे, अपनी न बोलना पड़े तो अच्छा, यदि बोलना पड़ता तो मन कहता कि इसकी पांच बात का उत्तर एक ही शब्द में दे दे तो जी फिर नाम में लग जाए, जी फिर नाम में लग जाए, नाम को कभी भूले नहीं। और यदि बात का उत्तर देना ही पड़ता तो उस समय भगवान से प्रार्थना करता मन कि ये भगवान अब तुम ऐसा करो जिससे बोलने का और ये झगड़ा न रहे, अपना नाम जप करने लगे, ये भावना थी। तो उस समय नाम जप निरंतर चलता था, गिनती नहीं थी, अब नहीं होता, अब तो व्याख्यान देने वाले उपदेशक का दंभ जीवन में आ गया ना, अब तो कल्याण के संपादकत्व का दंभ आ गया, साधना रही नहीं। उस समय ये चीज थी। तो ये साधक का धर्म होता है कि वो अपने काम में जी जान से लगा रहे और दूसरी चीज को पूरा पूरा विघ्न माने, चाहे वो अच्छे रूप में आती, उसको अच्छे रूप का विरोध नहीं है, उससे उस व्यक्ति से उस घटना से द्वेष नहीं है, पर उससे अपनी चीज जो छूटती है ना, अपनी चीज को छोड़ना वो सहन नहीं कर सकता, दूसरी चीज रहे अपनी। तो साधक को लक्ष्य पर स्थिर रहना है और अपने साधन के मार्ग पर निरंतर चले चलना है, दूसरी ओर ताकना नहीं, देखना नहीं, फंसना नहीं, रुकना नहीं, न मालूम न पहुंचे और बीच में मर गए तो जल्दी से वहां पहुंचने के बाद जो करना होगा सो करेंगे, अभी तो केवल पहुंचने की त्वरा है, पहुंच जाना है वहां पर, न मालूम कल क्या हो। कृष्ण स्तुति ये पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे दुहित मानस राज हंस प्राण प्रयाण समय कथवाचकृति कंठावोदन विधौ स्मरणं तु तस्ते। हे प्राणनाथ, हे नाथ, हे श्री कृष्ण, आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में मेरा मन रूपी राजहंस अभी प्रवेश कर गया, पिंजरा बद्ध हो जाए, पिंजरा फिर बंद कर दिया जाए, प्राण निकलने की अगर प्रतीक्षा करेंगे तो प्राण जाने के समय जब कफ बात पित्त से कंठ रुक जाएंगे, व्याकुलता आ जाएगी हृदय में, उस समय स्मरण कहाँ से होगा। तो अभी से इसी समय से जीवन के रहते रहते स्वस्थ हम भगवान के चरणारविंद में अपने को समर्पण करने का प्रयत्न करें, भजन में लगें, साधन में लगें, ये आवश्यक बात है। ये और चीज तो इसलिए है कि भाई अभी अभ्यास है नहीं और प्रेम का उदय हुआ नहीं, अभ्यास रुचि और रति ये तीन साधना में चीज होती है। अभ्यास के द्वारा वस्तु का निरंतर हम सानिध्य करते रहते हैं स्मरण बुद्धि से, रुचि होने पर आकर्षित होता है मन, उसमें स्वाद आता है, और रति होने पर छोड़ नहीं सकता। तो जब तक रति और रुचि न हो तब तक अभ्यास में विघ्न न पड़े, इसलिए निरंतर अभ्यास करें। पर अभ्यास अभी मन माना नहीं, रुचि हुई नहीं, इसलिए बीच बीच में कभी स्वाध्याय कर ले, कभी सत्संग कर ले, कभी अच्छे ग्रंथ को देख ले, इसलिए कि वो समय उसी श्रेणी के किसी काम में लगा रहे, एक से रुचि रहती नहीं, एक में आठ पहर मन रहता नहीं, तो कहीं प्रमाद आलस्य आकर के न घेर ले, इसलिए उसी श्रेणी के कई काम अपने जीवन में संग्रह करके रख ले। भाई पाठ भी करना है, जाप भी करना है, ध्यान भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, मनन भी करना है, सत्संग भी करना है, कीर्तन भी करना है, एक ही श्रेणी के बहुत से काम, इसलिए कि मन नेत्र न जाए, मन धोखा न खाए, कहीं प्रमाद में पड़ जाए, कहीं नींद में आ जाए, कहीं रजोगुण की किसी कुप्रवृत्ति में जा करके प्रवेश हो जाए, जीवन का अवकाश न मिले, फुर्सत न मिले, काम में साधन के काम में लगा रहे। इसलिए वैरायटीज हैं, ये अनेक प्रकार की चीजें हैं, इसीलिए नहीं कहने की आवश्यकता है। अगर जप में मन लग गया तो आवश्यक नहीं पाठ करना, कोई जरूरत नहीं, वो हो गया। भगवान के रूप में मन लग गया और वहां से अगर नहीं हटता तो आवश्यक नहीं किसी जप करने का और किसी चीज का। भगवान के तरफ वृत्ति अगर बैठ गई तो किसी बाहर के स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं। ये तो इसीलिए है कि किसी प्रकार से भी हमारा मन खिंचता है भगवान की ओर, भाई भगवान का श्रृंगार करो। ये मूर्ति पूजा में हम पते थोड़ी पूछते हैं, बुत परस्ती थोड़ी है, इसलिए कि भगवान में मतलब भगवान के लिए माला गूंथनी है, अब भगवान के लिए नैवेद्य बनाना है, अब भगवान की आरती करनी है, अब पोशाक पहनानी है, अब शयन कराना है, अष्टयाम जो पूजा होती है विष्णु की, यही तो है। क्या है, आठों पर भगवान की सेवा में हम संलग्न रहें, इसलिए ये पद्धति है। और अगर मन में भगवान आकर के बैठ गए तो पूजा पद्धति ये बाह्य है, पर वो फिर करेगा ही क्या, इसलिए प्राप्ति के बाद भी पूजा चलती है, सिद्ध होने पर भी साधना ही चलती है, और क्या करेगा फिर, उसे सिद्ध होने पर क्या साधना को छोड़ देगा, भगवान के प्राप्त करने के बाद क्या भगवान का नाम नहीं लेगा, भगवत प्राप्ति के बाद क्या भगवान से प्रेम नहीं करेगा, उसके बाद तो हो जाता उसका स्वभाव, साधना पहले और प्राप्ति के बाद हो गया सहज स्वभाव, सहज भाव से फिर वो भगवान में उसका जीवन अपने आप लगा रहता है। पर जब तक वो साधना के क्षेत्र में है तब तक वो अपने आप को उसको चाहिए कि खूब बचाए रखे, सावधानी के साथ। महाराज फिसलना जो है ये बड़ा सहज है, गिरना बड़ा सहज है, चढ़ना कठिन है। जरा सा पैर फिसला के गिरे और पैर की फिसलाहट जगह जगह, ये तो भगवान बचाते हैं। मनुष्य अहंकार करके करे कि हम अपने साधन से दुर्गुण दुराचार दुर्वृत्तों से बच जाएंगे, बड़ा कठिन है। भगवान सर्वसमर्थ हैं, दयामय हैं, उनकी कृपा का भरोसा रखे तो वो भगवान हमारी लाज रखते हैं जीवन की, हमें बचाए रखते हैं। तो भगवान की कृपा का आश्रय करके अपने आप को निर्भिमानता के साथ वीर मान कर भगवान की ओर निरंतर लगा रहे, ये सोचे कि थोड़े से जीवन में करने का काम एक ही है और सब काम तो निर्वाह के लिए है, खाना पीना कमाना ये सब जो है ये तो भजन के लिए जीवन रहे और जीवन का निर्वाह होता रहे, इसलिए भजन को छुड़ाने के लिए थोड़ा ही है ये तो ये सहायक बने हमारे हमारे काम, हमारी सामग्रियां, हमारी पूंजी, हमारा धन, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, परिस्थिति, प्राणी और पदार्थ, ये सब के सब भगवान के भजन में हमारे सहायक बने तब तो ठीक, और अगर बाधक बने तो इनका भी परित्याग आवश्यक है। ये कोई काम मनुष्य को अकेले आया अकेले जाना है, पर अपने कर्म के समूह को लेकर जाना है। यदि कर्मों का यहाँ हमने वो अवसान न हो गया, कर्म अगर नहीं जले तो दूसरे हमारे कोई काम नहीं आएंगे, यहाँ के कहीं उन कर्मों को भोगना पड़े, तो कर्मों को जला कर जाओ जिससे फिर फंसना न पड़े, न जले तो कम से कम उत्तम कर्म करते हुए जाओ जिससे आगे रास्ता तो मिले, साधन के मार्ग पर आरूढ़ हो जाओ, कहीं भ्रष्ट भी हो गए तो फिर भगवान बता देंगे रास्ता। और अभ्यास की मनोवैज्ञानिक चीज भी पूर्वाभ्यास है न के नहीं, रियते यवशो पिसह, अवश्य हो करके पूर्वाभ्यास नए अभ्यास में लगा देता है मनुष्य को। तो इसलिए तीन चीज की ध्यान रखने की आवश्यकता है। सावधान रहे कहीं जीवन भगवान को छोड़कर दूसरी ओर न जाने लगे। ये बड़ी सावधानी किसी भी शर्त पर और किसी भी प्रलोभन पर किसी भी भय पर इस बात का समझौता न करें। बोले भाई तुम कुछ दिन के लिए अलग छोड़ दो इस चीज को, तुम्हारा ये लाभ हो जाएगा, पीछे कर लेना। पर उसी में मर गए तो गया ना जीवन। कोई भय, कोई प्रलोभन, कोई परिस्थिति हमें अपने साधन से, लक्ष्य से न हटा सके, एक चीज तो ये, इसकी बड़ी आवश्यकता। इसमें नीति बीच में आवेगी, धर्म आवेगा, माने विघ्न कहीं धर्म बन करके आएंगे, कहीं नीति बन करके आएंगे, कहीं कर्तव्य बन करके आएंगे, पर वो आएंगे विघ्न आएंगे। जो भी भगवान के मार्ग से जरा सी देर के लिए भी हटाता है वो शुभ भी अशुभ है, वो पुण्य भी पाप है, वो धर्म भी अधर्म है, वो आत्मीयता भी ये वैरता है। इसलिए पहली बात तो ये कि लक्ष्य से हटे नहीं। दूसरी बात, इसी जीवन में कर लेना है और हो जाएगा, ये मन में निश्चय रखे, अगले जीवन पर न टाले। हमको तो यही कर लेना है जितना बाकी इसी में। तीसरी बात, भगवान की कृपा पर विश्वास करें कि होगा उनकी कृपा से ही, उनकी कृपा हम पर है ही। तो लक्ष्य की स्थिरता, सफलता का निश्चय और भगवान की कृपा का आश्रय, तीन बात। लक्ष्य की स्थिरता, लक्ष्य भ्रष्ट न हो जाए, और सफलता का निश्चय, इसी जीवन में सफलता होगी ही, और तीसरा भगवत कृपा का आश्रय। कहीं अभिमान न आ जाए, कहीं रास्ता भूलते हो तो कोई वहां बताने वाला न रहे, ऐसा न हो जाए। भगवान की कृपा निरंतर बचाती रहे, आगे बढ़ाती रहे, विघ्नों को हटाती रहे। ये तीन चीज दिन जीवन में लाकर साधक निरंतर चलता रहे। दो चीज बहुत आवेगी भला बीच में, प्रलोभन आवेगा और भय आवेगा। और खास करके ये भगवत कृपा के अतिरिक्त जो अन्य मार्ग हैं उनमें विघ्न और प्रलोभन दोनों अधिक आते हैं, बचाने वाला कम रहता है ना। कई सिद्धि आ गई बीच में और कहीं मान आ गया। साधक को जरा सा भी अगर मान प्रिय लगा तो मान जीवन में छा जाएगा, फिर वो साधना करेगा मान के अनुसंधान में। जहां मान नहीं मिलेगा वहां उसके रहने में उसे कठिनता होगी कि यहाँ का वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है, वो ये कहेगा। वातावरण की प्रतिकूलता तो ये साधन में सहायक है, क्योंकि वहाँ राग का, आसक्ति का बंधन नहीं होगा। जिसके घर वाले बहुत अधिक प्रेम करें और जिसको संसार की अधिक सुविधा प्राप्त, वो असल में परमार्थ की दृष्टि से भाग्यहीन है, क्योंकि उसको वहाँ स्नेह के बंधन की आशंका है। हो ही जाएगा बंधन, तो बंधा हुआ है ही पहले से। तो इसलिए उसके लिए अधिक विघ्न आते हैं, कहीं मान मिल गया, कहीं नाम हो गया, कहीं पूजा होने लगी, कहीं कोई सिद्धि आ गई, सपने में एक चीज देखिए वो कहीं हो गई कातकाली न्याय से, तो बोले हमारा स्वप्न सिद्ध हो गया, संकल्प सिद्ध हो गया। वो संकल्प सिद्धि के फेर में प्रयास, वो सर्व संकल्प सन्यासी नहीं होगा, वो तो संकल्प को बनाए रखकर बढ़ाए रखकर सिद्धि चाहेगा वो। और संकल्प का सन्यास यदि नहीं हुआ और सांकल्पिक ये जगत जो का जो बना रहा है तो भगवान से क्यों रहेंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है कि वो इन विघ्नों से सावधान रहे। तो प्रलोभन और भय ये दो बहुत आते हैं, और हम तो देखते हैं कि जगत में सब तरह के लोग हैं ना, द्वेष करने वाले भी, कुटिल भी, सीधे भी। तो सीधे लोग हैं बहुत जल्दी मान करने लगते हैं, उनका हृदय तो ऊंचा है, वो सब में शुभ देखते हैं बेचारे, इसलिए हमसे तो वो ऊंचे हैं। लेकिन वो अगर मान उनका हमें प्रिय लग गया तब फिर हमारे जीवन में अनुसंधान की वृत्ति रहेगी एक, कहाँ मान मिलता है। हमारी बात कहाँ कहाँ पर लोग आदर से सुनते हैं, बोले वहाँ तो सत्संगी है ही नहीं, क्या करें जा करके, 10 आदमी में नहीं आते, कोई प्रेम ही नहीं। तो जहाँ हमारी बात सुनने वाले होंगे वहाँ प्रेमी, चाहे वो देवताओं का समूह हो, हमारे न सुनने वाले हैं तो प्रेमी नहीं, हमारे न सुनने वाले हैं तो सत्संगी नहीं, क्योंकि हमें वहाँ पर मान चाहिए। अरे सुनाओ अपने भगवान को, तो परसों सुनाए थे ना गीत रविंद्र का, कि भाई तुम्हारे हमारे कॉल हुआ था, एक नाव में चलेंगे हम लोग अकेले और नाव को समुद्र के मध्य में छोड़ देंगे, किधर जा रही है कौन पूछेगा, तुम और हम दो मौज से, और हम तुमको वहाँ अकेले में गान सुनाएंगे, अकेले में गान सुनाएंगे, और वो गान किसी नियम में आबद्ध नहीं रहेगा। नियम में आबद्ध जो गान है वो तो नियम को देखता है, वो तो कहीं एक जरा सा ठेका ठीक नहीं लगा कि गायक का मुंह बिगड़ जाता है, पर प्रेमी गायक ठेका थोड़ी देखता है। तानसेन रहे, तानसेन ने बादशाह अकबर के पास रहे, एक दिन बड़ी सुंदर उन्होंने एक मलार राग गाई, बड़ी सुंदर गाई, बादशाह मुग्ध हो गए, बेहोश से हो गए। तो बादशाह ने पूछा ये तुमने कहाँ सीखी, बोले गुरु जी से सीखी। गुरु जी कौन, बोले हरिदास जी महाराज वो गाते हैं। बोले महाराज हम तो कुछ नहीं, वो कहीं उनके आप सुनने तब पता लगे, जो सुनाओ सुनाए कैसे, अब वो ये थोड़ी एक फरमाइश देने से वो यहाँ पर आपके दरबार में आकर के हाजिरी दें और यहाँ गान सुना दें। तब जिज्ञासा थी, अरे हम चलें, बोले बादशाह ही वैसे काम नहीं चलेगा, चलना हो तो मामूली आदमी बन के हमारे साथ चलो। तो मामूली विदेश में अकबर तानसेन के साथ हो गए, बाहर जा कर के बैठ गए एक पेड़ के नीचे। अकबर से कहा बैठ जाओ यहीं पर, मैं जाता हूँ अंदर जा कर के, हरिदास जी महाराज समाधिस्थ थे, जा करके प्रणाम किया, हरिदास जी जाके बड़े तानसेन ठीक हो, खूब मजे में हो। महाराज बोले महाराज उस दिन जो आपने एक गान सुनाया था संगीत, वो जरा फिर सुनाइए, मैं फिर सुनना सीखना चाहता हूँ। तो लाओ तानपुरा, अकबर को इशारा कह दिया कि अब जरा अभी गान में मस्त होंगे, अब आके बैठ जाओ। अकबर आके बैठ गए, उठाया उन्होंने तानपुरा और लगे गाने। अब महाराज अकबर को तो कोई ज्ञान रहा नहीं, बड़ी सुंदर वहाँ की एक रचना हो गई, तमाम सात्विकता भर गई और तमाम मानो भगवान का संगीत तमाम उस अरण्य में फैल गया। वो जब चेत होने लगा तो हरिदास ने कहा कि बाहर निकल जाओ, अकबर को बाहर कर दिया। लौट आए, अकबर ने पूछा कि ये क्या बात है, तुम तो ऐसा नहीं गा सकते, तुम इतने बड़े गायक और ये इतना अच्छा गाते हैं। तो तानसेन ने कहा महाराज मैं आपको सुनाता हूँ और ये भगवान को सुनाते हैं, ये बड़ा अंतर है ना। भगवान को सुनाने वाले का स्वच्छंद गान होगा, उस गान में कहीं बाहरी नियम की बद्धता नहीं है। तो रविंद्र ने गाया बड़ा सुंदर कि तुम्हारे हमारे कॉल हुआ था कि अकेले में मैं गान सुनाऊंगा, और ढेर मथन वो समुद्र की तरंग की भांति जिधर चलेगा चलेगा, कोई बंधा सुर नहीं, और तुम उसको रागिनी समझ करके बड़े उसमें रस लेकर तुम सुनोगे, हंसते रहो।